काम ब्रज आशी।
तुम ब्रजवासियों को चाहे रुलाओ या मारो, अथवा जो इच्छा सो करो, किंतु तुम उनको जीवन क्यों रखा जो इसे मर के नहीं जाने देते, जो उनको बार बार दुखी है सब सहाते उनको मार देते, तुम तो भगवान नहीं हो तो उनको खत्म कर देते। बस अभी एक पेपर में आया, इंग्लैंड में एक कोई महिला थी, अपने पति को बहुत प्रेम करती, करीब करीब 60-70 वर्ष की उम्र में उनके प्रेम में कभी कमी नहीं आई, और 60 वर्ष के बाद में वो व्यक्ति बीमार पड़ा, और ऐसा बीमार पड़ा दिन रात कष्ट से कराहता था, रोता है। तो उसने गोली निकाली अपनी पिस्तौल और उससे उनकी छाती में किया, गले में। इसके बाद में पुलिस आई, उसको पकड़ करके ले गई। ले जाने के बाद में पूछा कि क्यों मारा, इनसे हमारा इतना प्रेम, इनके दुख को मैं देख नहीं सकती, मैं इनका दुख देख करके, कराहना और रोना देख करके मुझे बड़ा दुख होता था, इसलिए मैंने देखा जिस इनके जीवन लीला ही समान इनका दुख बस इनको था। इसे क्या होगा, कोर्ट ने क्या राय दिया ये मुझको पता नहीं, किंतु गोली से हमको उड़ा दिया, ये प्रेम में ऐसा होता है। गांधी जी ने कहा भी एक गैया को मर रही है, प्राण नहीं निकल रहे, अच्छा तो इसको गोली मार दो खत्म। आजकल ये नया निकला है फार्मूला, माता पिता को कष्ट हो रहा, बहुत बूढ़े हो गए हैं, बुढ़िया बुढ़िया को, बुढ़िया और बूढ़े बहुत कष्ट सह रहे हैं, और हमको कष्ट, वो अपना सहते तो कोई बात नहीं, अब अपनी आंखों से उनका दुख नहीं देखा जाता, इसलिए गोली से मार दो सहज जी बस खत्म हो जाएंगे, हम लोग निरपोष हो जाएंगे।
नया नया इंजन
कर रहे हैं, जैसे चाहे ब्रजवासियों को मारो या जिलाओ, अपनी मैया को क्यों दुख दे रहा है। तुम्हार जे तुम्हार जे अन्न दे अन्न संग अन्न देश, ब्रज जने कबू नहीं भार, ब्रज भूमि छाड़ते नारे, तुमा ना देखिले मरे, ब्रज जनन की हबे उपाय। तुम्हारे ये अन्य वेश, हाँ तुम्हारा ये वेश देख करके कितना आनंद होता है, वाह वाह, सोने का मुकुट पहन रखा है, गले में सोने के हार लगे हुए हैं, और हाथों में धनुष बाण या तलवार, ये सब धार, कितना सुंदर आपका ये दिख रहा है। फिर कहने से हमें तनिक भी ये अच्छा नहीं लगता, हमारे दुख का यही प्रधान कारण है, आपने सब कुछ बदल दिया, पेश बदल दिया, माता पिता जाति देश सब कुछ आपने बदल दिया। तुम्हारे अन्य वेश अन्य संग अन्य देश, तुम्हारा अन्य वेश अब क्षत्रियों का वेश, जगवंशियों का वेश हो गया, अन्य संग अब आपके प्रधान मित्र बने हैं, सुदामा जी आपके मित्र बने हैं, अर्जुन सखा बने हैं, भीम नकुल सहदेव आपकी संगनी बनी हैं, रुक्मिणी सप्तभामा प्रभृति आपकी सखी सहेली बनी है, द्रौपदी आपके ये सब मित्र, अब क्षत्रिय लोग, गोपों का कोई भी स्थान नहीं है, कोई गोप सखा नहीं, गोपी आपकी सखी नहीं, मैया आपकी गोपी नहीं, बाप आपका गोप नहीं, सब हो गए अब क्षत्रिय हो गए। और अन्य देश ब्रज को आपने छोड़ दिया, चले गए कहाँ, समुद्र के खारे नमकीन पानी से जहां पर भरा हुआ है, नमक का अतिरिक्त और कुछ नहीं, हवा भी कैसी चलती है, नमकीन हवा, और वहां पर खूब बाग बगीचे होंगे, नीचे हम लोग गए जब पहली बार परिक्रमा गुरु जी के साथ में गया, बहुत पहले मथुरा मठ के होने से बहुत पहले हम लोग गए थे। वहाँ पर पानी खरीदना पड़ता था, एक घड़े का पानी का दाम 10-15 रुपए। तो देखा एक बड़ा भारी कुआं बना हुआ है द्वारका में, और वो काफी नीचा पड़े 60-70 फुट से भी अधिक गहरा, और पानी इतना बड़ी मुश्किल से उसमें से पानी लाते, वो भी पूरा शुद्ध नहीं, उसमें भी थोड़ा थोड़ा खाली जा। ये तो वहां यहाँ ब्रज में छोड़ करके चले गए, जमुना नदी वहां छोड़ करके चले गए समुद्र के किनारे। ब्रज ने कभी नहीं कहा, ब्रजवासी ऐसा नहीं चाहते हैं, आप वहां जाकर के दुखी और कष्ट सहे, हम लोग नहीं चाहते, आप प्रेम के साथ में वृंदावन में रहें। ब्रजभूमि छाड़ी तेनारे तुमाना देखिले मरे, ब्रज ने की हो दे उपाय। कहते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि चलो, जैसे हमारे वहां पर 16108 महिषियां हैं, तुम लोगों के लिए भी एक एक राजभवन बना दे, सबके लिए, नंद बाबा के लिए, यशोदा मैया के लिए, और तुम सब लोगों के लिए घर बना देंगे, बड़े प्रेम के साथ में हमारे साथ में वहीं पर रहना। तो गोपियां कहती हैं ब्रजभूमि छाड़ी थे, तुम छोड़ करके हमें चले गए ये संभव है, किंतु हम लोग वृंदावन को छोड़ करके नहीं थे। क्यों? इसलिए तुम्हारे गोपाल रूप की जावती स्फूर्ति है वृंदावन में है, समझ रहे? मोर मुकुट धारण करके अपने को गोपाल कहने वाले, और गोवर्धन की कंदराओं में, वृंदावन की राशस्थली में बरसाने के वो गौर बन के, कौन घाटी साकरी खोर में, और सब मयूर कोटी में, राधा कुंड में, सूर्य कुंड में, सूर्य की पूजा इत्यादि में आपकी जितनी स्मृतियां भरी पड़ी हैं, इन स्मृतियों को छोड़ करके हम आपको साक्षात इस रूप में क्षत्रिय राजा के रूप में और क्षत्रिय वेश में, क्षत्रिय छाद में, यह द्वारका में हम देखना नहीं चाहते, इसलिए हम वृंदावन को छोड़ करके यहाँ कभी आना नहीं चाहते। क्यों आना नहीं चाहते? मान ले कि ये गोपियां सब यदि वृंदावन को छोड़ करके वहां पर चली जाएंगी, सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि को छोड़ सकेंगे? जल्दी राज दरबार में बैठे हुए, राजभवन में बैठे हुए हैं कृष्ण, अब बड़ी श्रृंगार करने वाली सोने के आभूषण से लदी हुई वो सब शहरी उनकी प्रियाएं आएंगी, तो ये क्या करेंगे, उनसे मिल सकेंगे उस समय? कहा जी हम विवाहिता हैं, आप लोगों के साथ में विवाह हुआ, तो ये क्या कहेंगे, या गोपियां ही क्या कहेंगे? गोपियों को हटा दें, ग्वारी कहां, यहां से हट जाओ, नहीं कहेंगे तभी हमारी यदि उपेक्षा होगी तो क्या स्थिति हमारी है? इसलिए हम यहीं पर जैसे तैसे बनी हुई मरेंगे, किंतु वृंदावन को हम नहीं छोड़ सकते। इसलिए गुलाब का फूल या कमल का फूल अपनी डंडी में ही रहने पर वो
उसकी शोभा
सुगंध उसमें रहती है, वो प्रफुल्लित रहता है, और उसके वृंत से हटा दो तो वो मुरझाता हुआ एकदम सूख जाएगा। इसलिए हम वृंदावन को, अपने वृंत को छोड़ करके वहां पर हम नहीं जा सकते। एक जगह में मैं इस प्रकार का ऐश्वर्य भाव, स्वकीय भाव और पार्थिव भाव दोनों एक साथ में, एक म्यान की में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, इसलिए हम लोगों का छोड़ना चाहिए। और हम वृंदावन को छोड़ करके रह नहीं सकती, जा नहीं सकती, और तुम्हें नहीं देखने से हम जीवित भी नहीं रह सकती, यह बात ठीक है। अब बतलाओ हम लोग क्या करें, अब आप ही बतलाइए, वृंदावन को हम नहीं छोड़ सकते, और आपके देखने बिना भी मर, और आप रहेंगे द्वारका में, वृंदावन में आएंगे, और मेरे लिए क्या उपाय है? तुम्हें ब्रज जीवन, ब्रज राजे प्राण धन, तुम्हें सकल ब्रजेर संपद,
तुम ब्रजराज के प्राण स्वरूप हो, जीवन हो, ब्रज तुम्ही ब्रजे,
ब्रज के तुम
जीवन हो। और उसमें ब्रजराज जो हैं उनके तो प्राण ही हो तुम, तुम्ही सफल ब्रजेर संपद, ब्रज की सारी संपत्ति तुम ही हो, कृपात्र तुम्हार मन, ठीक है आपका चित्त भी कृपात्र है, कृपा से आत्र हो जाता है, मैंने द्रवित हो जाता है। आशी जियाओ ब्रजजन, ब्रजे उदय कराओ निज पर। आप कहते हैं जो मैं क्या करूं, तो हमारे साथी में आप चलें। यदि तुम हमारे प्रति आर्द्र होते हो तो हमें और ब्रजवासियों को जीवित करने की इच्छा है तो आप हमारे साथ में वृंदावन, अपने चरणों को वृंदावन में ले चले, वहां पर उदित करें। और वही हमारा मन है, इसलिए हमारे मन में ही आपने कहा कि ध्यान करो, तो ध्यान में मन में ही तो भगवान के चरण दिखते हैं, तो हमारा मन तो वृंदावन है, वृंदावन में चलिए, अपने आप वो काम हो जाएगा। सुनिया राधिका रबानी प्रेम ब्रज प्रेम मन यानी भावे व्याकुलित देह मन, ब्रज लेबर प्रेम सुनी अपना केरिनी मानी करे कृष्ण तार आश्वासन। सुनिया राधिका रबानी, राधिका जी की ऐसी वाणियों को सुन करके ब्रज प्रेम मने यानी ब्रज के लोगों का प्रेम उनके स्मरण में आया। स्मरण में तो है ही है, किंतु व्यक्त नहीं करते थे, व्यक्त करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता। आज गोपियों को देख करके उनका हृदय भर आया और वो व्यक्त करने लगे, उनका भाव उसी भाव में वो भर गए और अत्यंत व्याकुल होकर के कहने लग गए। तब कह रहे हैं प्राण प्रिय सुन मोरे यही सत्य बचा, राधिका जी को उसका उत्तर देने लगे, कह रहे हैं हे प्राण प्रिय श्रीमती राधिके, मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं सत्य कह रहा हूं, अपने हृदय की बात कर रहा हूं, तुम इसको दूसरे रूप में मत ग्रहण करना। तुम्हार सबार स्मरणे झुरु मोई रात्रि दिन, मैं तुम लोगों का स्मरण करके दिन रात रोता हूं किंतु किसी को कह नहीं पाता। बृहद भगवतामृत में सनातन गोस्वामी ने इन सब का बहुत सविस्तार वर्णन किया है। सब समय कृष्ण उनका स्मरण करते हैं, गोपियां जितना करती हैं ये भी स्मरण करते हैं, किंतु गोपियां अपने मन की दुख परस्पर में बांट लेती हैं, किंतु कृष्ण के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने मन की बात किसी से दूसरे से कह सके। क्यों सभी लोग क्षत्रिय हैं, वो सभी जादव हैं,
सजातीय वाला,
इसलिए इस प्रेम के संबंध में उनकी कोई भी धारणा नहीं है, इसलिए वो लोग कहेंगे जिसे अरे भाई उनसे क्या संबंध है तुम्हारा, शादी तो तुम्हारी हुई है इन सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि के साथ में, उन गोपियों से तुम्हारा क्या संबाल्य फल में प्रेम तो था वो खत्म हो गया, इसलिए कुछ उसका मूल्य ही नहीं देंगे। इसलिए दिन रात में उस दुख में तड़पता हूं, मोर दुख ना जाने कोनो जन, किंतु हमारा दुख कोई भी नहीं जानता, यहां तक कि तुम लोग भी शायद जानती हो कि ना, नहीं जानती हो। ब्रजवासी जत जन माता पिता सखागण सब है मोर प्राण सा, ब्रजवासी जितने भी हैं माता पिता सखा सब मेरे प्राण के समान प्रिय हैं। और तार मध्य गोपीगण और सब तो प्राण के समान प्रिय हैं, और उनमें से जो ब्रजवासियों में भी जो गोपियां हैं साक्षात मोर जीवन, साक्षात रूप में मेरे प्राण के समान है, जीवन के समान, और तुम ही मोर जीवन है जीवन, और तुम हमारे उसमें भी
जीवन का
जीवन के भी तुम जीवन। तुम्हार सवार प्रेम रसे आमा के करी लबसे आमी तुम्हार अधीन केवल, ये कहां सब हो रही है बातें, महाप्रभु जी सोच रहे हैं ऐसी बातें, कृष्ण को रथ पर देख करके
फिर हमें तड़पते हुए राधा जी के भाव से इस चीज को अनुभव कर रहे हैं महापुरुष, और अपने ही आप भावना में कह रहे हैं, तुम्हार सवार प्रेम रसे अमा के करीज, तुम्हारा ये यह प्रेम है जो पराकाष्ठा कहाँ तक महाभाव रूर अधि रूर तक चला गया है, मादन मोदन तक चला गया है, उसने हमको अब तुम लोगों के वशीभूत कर दिया। तुम्हार सब छणाइया अमा दूर देशे लइया राखिया छे दूर दैव प्रभा, मैं तो चाहता हूँ कि अभी तुम लोगों के पास में आ जाए, किंतु हमारे दुर्दैव ने वो इतना प्रबल है कि तुमको हमारा जो जीवन का जीवन जो है उसको छुड़ा करके हम लोग को विलग कर दिया, ये काल का प्रभाव। यही बात कुंती जी को वसुदेव जी ने भी कहा, यही बातें सर्वत्र भी है। एक पिता के चार लड़के हुए, बचपन में एक साथ में खेले कूदे पढ़े लिखे मैया बाप के पास में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि यही बच्चे चारों पिता माता के वृद्ध होने पर ये अलग अलग चले जाएं, अलग अलग जाना ही नहीं परस्पर विरोधी भी हो जाएंगे, विरोध भी नहीं रहने पर परस्पर प्रीति नहीं रहेगी। बड़े भैया ने छोटे भाइयों का लालन पालन किया, कोई कल्पना कर सकता है उसको, यही संसार की नीति, दुर्दैव काल ये सबको अलग अलग कर देता है। कोई भी नहीं चाहता है कि मैं दुखी रहूं या कोई दुखी रहे, तो भी हो जाता है, यही सब काल का प्रभाव। कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी श्रीमती जी से ऐसा कह रहे हैं, किंतु यहां पर यह बात ठीक नहीं, उनके लिए दुर्दैव क्या है, गोपियों को वो सांत्वना नहीं दे सकते हैं मिलने पर, वो दुखी और हो जाती हैं, विरह उनको हो जाए मिलने में भी, इसलिए ये उनको दुर्दैव कर रहे हैं। रास में अंतर्ध्यान किस लिए हुए, गोपियों को सांत्वना नहीं दे सके, सभी कोई सौभाग्य मत में इछलाने लगी, किसी ने मद कर मान में मदमत्त हो गई, देखा जैसे ये सब बिगड़ गया, खेल तमाशा सब राशि नहीं होगा, तो अब क्या करें, दुर्दैव कारण उनको अंतर ध्यान होना पड़ा, इसलिए ये भी कृष्ण के लिए दुर्द प्रेम ऐसा ही टेढ़ा होता है। कह रहे हैं कृष्ण प्रिया प्रिय संग हिना, प्रिय प्रिय संग बिना नहीं जिए ये सत्य प्रमाण, कहते हैं कि यह बात ठीक है, शास्त्रों में भी ऐसा है, मनुष्य की तो बात क्या, पशु पक्षियों में भी ऐसा देखा जाता है, जो प्रिय के विरह में प्रिया और प्रिया के विरह में प्रिय जीवन को छोड़ देते हैं, इसके एक ही तो प्रमाण नहीं है, हजारों प्रमाण है। एक सर्प है, सर्प को किसी ने मार दिया, या तो सर्पणी वो बदला ले ली, किंतु थोड़ी देर के बाद वो भी मर जाए, ऐसा भी देखा जाता है। पशु पक्षियों के जोड़े में भी देखा जाता है, जो क्रंच पक्षी इत्यादि करते हैं, या पति मर गया तो वो भी मर जाएगी, और प्रिया मर जाएगी तो वो मर जाता है, ऐसा देख सावित्री सत्यमान का, और किसका, हाँ अनुसुईया का तो दूसरे तरफ का, वो ये पति वाला ये भाव में, वो तो भगवत भक्त थी, सावित्री सत्यवान वो बंगाल में ही क्यों इधर नहीं, नल दमयंती, हाँ नल दमयंती, ये सस्ता देखा जाता, ये भी मोह है, ये भी मोह है, संसार का बंधन का कारण है। यदि कृष्ण में ऐसा भाव हो तब तो जीवन बन गया, और नहीं तो इसका मूल्य शास्त्रकारों ने किन के लिए दिया है, मोह में अंधा जो फंसे हुए हैं संसार में उन लोगों के लिए धाजे जगत में चलने के लिए एक ऐसी नीति होनी चाहिए, बस यही तक। परमार्थिक उसमें कुछ लाभ नहीं,
नीति शास्त्र का वचन।
इसीलिए द्रौपदी, कुंती, तारा, अहिल्या, मंदोदरी, इनको इन लोगों में भी सबसे श्रेष्ठ माना, पंचकन्या माना। इनका स्मरण करने से भी जगत के लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि भगवान को ही अपना परम पति ये सम्मान। तो प्रिया के बिना प्रिय और प्रियतम के बिना प्रिया जीवन निरक्ति, ये बात तो ठीक है, नहीं दिए ये सत्य बाप प्रमाण। किंतु मोर दशा सुने जबे तारे यही दशा होवे यही भय दुहे रखे, हमको भी मर जाना चाहिए था तुम लोगों के विरह में, और तुम लोगों को भी हमारे विरह में मर जाना चाहिए, प्रेम का यही रीति है। जैसे मछली
पानी
को अपना जीवन समझती है, मछली को पानी में से अलग कर दो साथ ही साथ में तड़पती हुई मर जाएगी, किंतु पानी उसके लिए मरता है कि नहीं ये देखना है, पानी मरेगा या मरता भी है तो कौन देखता है, इसलिए वहां पर तो नहीं, किंतु हाँ मछली की तरफ से देखा जाता है। यह बात तो सत्य है, किंतु परस्पर मरते किस लिए नहीं है। कृष्ण सोचते हैं कि यदि मैं मर गया तो गोपियां तो बिना मारे मरी, और गोपियां किस लिए नहीं मरती, यदि हम मर जाएंगे तो वो आकर के देखेंगे ब्रज सुना है कोई भी गोपी नहीं तो वो मर जाएंगे, इसलिए एक दूसरों के लिए प्राण रखते हैं। शेषति प्रेमवती, सीता जी को रामचंद्र जी ने वन में छोड़ दिया, सदा के लिए छोड़ दिया, केवल 14 वर्ष के लिए नहीं, आजीवन छोड़ दिया। लक्ष्मण जी को निर्मोही बन करके कहा जाओ वाल्मीकि आश्रम के पास में छोड़ देना, वो छोड़ करके चले आए। छोड़ना तो हृदय से नहीं चाहते थे, उनके लिए भी यही दुर्दैव समझिए। अच्छा, सीता जी ने रामचंद्र जी के पास में आने के लिए कोई प्रयत्न किया या नहीं, कुछ प्रयत्न किया, बस उनकी थाती जो उनके पास में थी, दो पुत्र जो थे उनको रखा, उनको सहेजा, उनको जीवित रखा, उनकी उनको पाला पोषा, किंतु एक बार भी कोई प्रयत्न नहीं किया कि मैं उनसे मिल जाऊं। यह है पतिव्रता, जबकि हमको छोड़ने से वो सुखी है बहुत आनंद से, ठीक है सुखी है, किंतु रामचंद्र जी भी सुखी नहीं। इसलिए रामचंद्र जी के बातें तो लौकुश से कहती हैं, किंतु हमारे वो पति हैं ये कभी नहीं, रामायण सुना रही हैं, वाल्मीकि जी भी उनको रामायण पढ़ा रहे हैं, सारा रामायण उनको पढ़ा दिया, किंतु ये नहीं बतला कि तुम राम के दोनों बेटे हो, याशी ये सब कुछ नहीं बतला, तुम मैया हो, हमारे गुरु जी ये वाल्मीकि जी हैं, बस इतना ही कर, कोई भी अंत में जिस समय पता लगा ना, अंत में पता लगने पर क्या हुआ, सीता जी पताल में चली गई, किंतु कभी भी प्रयत्न नहीं किया जी रामचंद्र जी हमारे पास उनके पास में जाने से उनको कष्ट होगा, ऐसा होना चाहिए। ये गोपियां भी ठीक वैसे, गोपियां और भी अधिक, इसलिए कहते हैं हमारी दशा सुन करके गोपियां मर जाएंगी, और हम गोपियों की दशा सुन करके जब वो गोपियां मर गई हैं तो हम भी मर जाएंगे, इसलिए दोनों प्रिया प्रियतम दोनों के लिए जीवन धारण करके रखते हैं। दुख को सह्य करना ये बड़ा भारी कठिन है, मर जाना सहज है। आप लोग विचार कीजिए, भरत जी ने कहा कि तुमको मैया कभी नहीं कहेंगे, कह कही इतना बड़ा भारी राजभवन, राजभवन में कौन है, केवल एक केवल है और सब निकल गए, राजभवन में नहीं रहे, यहाँ पर वो इतना बड़ा बात, महाराज तो स्वर्ग हो गया मेरा, स्वर्ग धाम को चले। और ये दो रानियां थी कौशल्या जी और
सुमित्रा,
वो दूसरी जगह चली गई। घर में कोई अकेले कितना कष्ट हो रहा है, वो भरत जी के पास में गई, हमको बेटा यहीं पर रख लो नंदीगांव। उन्होंने उत्तर क्या दिया, तुमने जैसे कर्म किए हैं
तुम्हारे तपस्या स्थली हुई है,
तुम वहीं पर रह करके घूरो और मरो। आग पर तड़पते हुए एक बार मत मरो, झुलसते 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 तुम मरो, यही तुम्हारे लिए उचित है। वहीं पर हो, राजभवन में रहो, जिस राजभवन को तुमने मांगा था। इस वन में जंगल में हमारे पास में तुम्हारे रहने का कोई भी अधिकार नहीं। क्या कैसी हो गई, दिखलाया नहीं, जो पागल हो गई, पागल होकर के सिर और ये कुर्ती में घर में चाहते हुए। एक बार कभी मैया नहीं कहा, न देखने के लिए आए, तुमको कोई कष्ट हो तो राज दरबार में बतला देना, वहां से समस्त महारानी कहते ही कि व्यवस्था हो जाएगी, सब व्यवस्था, खाना पीना सब। किंतु जहां प्रेम नहीं है वहां पर मन ही नहीं लगे, वहां पर मरना ही बल्कि यह होता है। वही कहते हैं से सती प्रेमवती प्रेमवान से ही पति वियोगी ये वांछे प्रिय। वियोग में भी परस्पर का हित तो सोचे, ये तो यथार्थ में प्रिया और प्रियतम है। आजकल किसी से प्रेम किया और लड़की की शादी दूसरी जगह हो रही है, सुन लिया इस परिस्थिति में हो रही है, लड़की की इच्छा के विरुद्ध भी हो रही है शादी, तभी वहां पर जाएगा पिस्तौल लेते हुए, पहले लड़की को मार करके अपने को खत्म करके दोनों मर गए। वाह कैसा आनंद, कैसे जाएंगे वहां पर, फिर मिलेंगे कहां पर, स्वर्ग लोक में दोनों मिलेंगे, बड़े आराम के साथ में रहेंगे। क्या उनकी दुर्दशा होगी, वो नहीं समझते हैं और सबको की तरफ में पीस दिए जाए। किंतु यथार्थ में प्रेमवती और प्रेमवान वही है जो दुख में भी उनका हित समझते हैं, कैसे इनका सुख हो, कैसा इनका सुख हो, परस्पर परस्पर की चिंता करते हैं। नागने अपने दुख पांच प्रिय जन सुख सही दुई मिले अतिरा, ऐसे यदि दोनों में प्रेम है तो एक दिन दोनों मिले। हमारा भी तुम्हारे प्रति ऐसा है, तुम्हारा भी ऐसे हमारे प्रति है, इसलिए हम अनुमान कर रहे हैं कि हम अब बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं। राखिते तुम्हार जीवन सेवी आमी नारायण, तार सत्य आशी नीति नीति तुम्हार साले क्रीड़ा करी पुन जाई जदुपुरी, तहा तुम्ही मान मोर स्फूर्ति। कहते तुम्हारा ये जीवन रखने के लिए मैं द्वारका में नहीं रहता, द्वारका में हमारा शरीर भले ही रहे, मैं एकदम चला आता हूँ सरस्वती जी यहाँ पर वृंदावन और तुमसे मिलता हूँ और उस समय मैं तुमको मनाता हूँ, तुमको उठाता हूँ, तुम्हारे केश बंधन करता हूँ और तुम समझती है क्या ये स्मृति है, स्वप्न देख रही ये कृष्ण कह रहे हैं। तुम आशा ने क्रीड़ा करी, तुम लोगों के साथ में मिलता हूँ जुलता हूँ विलास करता हूँ और इसके बाद में फिर मैं तुम लोग सोचते हैं जा रहे कहाँ कृष्ण, ये तो हमने स्वप्न देखा, स्वप्न नहीं ये स्फूर्ति नहीं, ये सचमुच में मैं आता हूँ तुम लोगों से क्रीड़ा करके और फिर मैं चला जाता हूँ। मोर भाग्य मो विषय तुम्हार जे प्रेम है से प्रेम प्रमर परम प्रबल लुकाइया माने सद्य कराए तुम्हार सने प्रकट हुआ बेसत्वर। हमारे विषय में तुम्हारा जो प्रेम है महाप्रेम, प्रेम की अंतिम दशा तक है, वही प्रेम शीघ्र ही इतना प्रबल है हमें बांध करके तुम्हारे पास में लेकर के आएगा, उसको ऐसा पूर्ण
विश्वास
इसी का वो अनुवाद है। जातिर विपक्ष जत दुष्ट कौन पक्ष
जादुओं के पक्ष विपक्ष में कंस दुष्ट, कंस के जितने भी लोग थे, कंस मारा गया, उनके भाई मारे गए, चारुण मस्तिक मारा गया, अब थोड़े से लोग हैं। कौन है? जरासंध और कौन?
कालजम
और उसका भाई
शिशुपाल
तो गया, दंत बकर भी और भी दो चार हैं, क्योंकि ब्रजवासियों पर संकट आने की दशा है, अवस्था है। यदि मैं ब्रज में रहूं, आ जाऊं, जरासंध वहीं आक्रमण करेगा और जितने ये हमारे विरोधी हैं वो सब वहीं पर, वहां पर न तो किला है, न युद्धे हैं, न कुछ है, सब ब्रजवासियों को चौपट कर दें। इसलिए मैं वहां पर थोड़े दिन और रह करके सबको समाप्त करके मैं आने वाला ही हूँ। से शत्रु हईते ब्रज जन राखीते, ब्रजन को रक्षा करने के लिए मैं नहीं आ रहा, इसलिए मैं राज्य में रहता हूँ, उदासीन हूँ। जैसे पानी में कमल का पत्ता होता है, ऐसे में द्वारकाधीश इत्यादि का राज्य से हमारे कोई भी संबंध नहीं है। जब स्त्री पुत्र धन है, जो हमारा वहाँ पर स्त्रियाँ हैं 16108, पुत्र हैं एक एक से 10-10 और लड़कियाँ हैं एक, और विपुल संपत्ति है जो ब्रह्मा और शंकर के लिए भी संभव है। वहाँ पर ये किस लिए? तुम लोगों के लिए। किस लिए? तुम लोगों के, किंतु कह रहे हैं कि किसके लिए? जदुओं के को संतना देने के लिए। जदुगणे संतोष लगिया, किंतु जदुगण का संतोष ये कह रहे हैं किंतु तुम लोगों के लिए। क्यों? मैं तुम लोगों के लिए वृंदावन को छोड़ा, तुम लोगों के लिए ही विवाह किया, तुम लोगों के लिए ही जदुपुरी में हूं, तुम लोग इस चीज को समझते नहीं। यही प्रेम का बहुत ऊंचा तात्पर्य है। तुम्हार जी प्रेम गुण करे अमा आकर्षण आनी दे अमा दिन 10-20 पुनः आशी वृंदावने ब्रजवधु तुमासने विलस्य रजनी दिवसे। इस प्रकार से 10-20 दिन में ही मैं सब काम समाप्त करके अब आने वाला ही हूँ। चैतन्य महाप्रभु इसी भावना के साथ में कृष्ण को रथ में बिठला करके, इतना कहने के बाद कृष्ण राजी हो गए, तो कृष्ण को लेकर के वृंदावन में वो आ रही हैं। यही रथ यात्रा का मूल तात्पर्य है। सातवों के हृदय में भी यदि यही रहे, चिरकाल से हम भगवान से भी छुड़े हुए हैं, उनके बिना हमारे सुख और शांति नहीं हो सकती, इसलिए गोपियां जैसा प्रेम हमारे हृदय में हो, ऐसा इतना उन्नत न हो तभी भक्ति हो, जिससे कि फिर भगवान से हमारा साक्षात्कार हो सके और उनकी हम सेवा में जा सके। यही हमारा स्वरूप है जी। जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो कृष्ण नहीं मिलेंगे, तब तक हमें सुख और शांति नहीं होगी। ये ध्रुव एक निश्चित रूप में से जगत में आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ, इसका कोई भी प्रमाण नहीं। सुखी वही है जो कृष्ण के चरणों में जिनका प्रेम है। वंचा बोलो
शंकराय राधिकाय सदादे कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय यं प्रव्रजन् समस्ते समतेशकृष्णं द्वैपायनो विरह कातरया जिहव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो भूतेषु तं सर्वभूतैर्नमः। तवैवास्मि तवैवास्मि
प्रेमवती सती प्रेमवती है और प्रेमवान वही है जो वियोग होने पर भी एक दूसरे का को काहित हित साधन करते, अनिष्ट नहीं, और इसलिए अपना वो प्राण प्रत्याग नहीं करते, क्योंकि दूसरे को दूसरे भी इससे मरेंगे। यदि प्रेमी मर जाए तो प्रेमिका मर जाएगी, और प्रेमिका मर जाएगी तो प्रेमी मर जाएगा उसके विरोध में, इसलिए दोनों दोनों के प्राण रखते हैं इस दूसरे के लिए। और सब समय उनका कल्याण चाहते हैं। इस जगत में ऐसा नहीं होता है, इस जगत में अपना स्वार्थ प्रधान होता है। यदि कोई वस्तु चिंतामणि हमारे हाथ में है और दूसरा उसको लेना चाहता है, भले चिंतामणि को हम नष्ट करके फेंक देंगे किंतु दूसरों को नहीं देंगे, ये जगत का भाव है। वो प्रेमिका यदि हमको नहीं मिलती है तो भले ही मैं उसको भी समाप्त कर दूंगा, अपने भी समाप्त कर दूंगा, उसका ही उसका भलाई नहीं सोच। किंतु यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं दोनों अलग होने पर भी कृष्ण द्वारका से भी गोपियों का हित चाहते हैं और गोपिकाएं भी यहाँ से दूर रहते हुए भी उनका हित चाहते हैं। कृष्ण ने अंत में कहा, मैं आता हूँ ब्रज में, तुम लोगों से मिलता हूँ, किंतु तुम लोग प्रेम की अधिकता के कारण इसको स्फूर्ति या स्वप्न मानते हो, तो मैं आता हूँ। जब कृष्ण ने कुछ ऐसे उदाहरण दिए और प्रमाण पुष्ट प्रमाण दिए तो गोपियों को विश्वास हो, तब गोपियां कुछ शांत हो गई। तब कृष्ण ने कहा, मेरे ब्रज में न आने के बहुत से कारण हैं, उसमें प्रधान कारण तो अभी यह है, जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा है। यदि मैं ब्रज में आ जाऊं तो जरासंध मैं जहां रहूंगा ब्रज में वहीं पर आक्रमण करके ब्रजवासियों को नष्ट कर देगा। मथुरा में कुछ साधन है जो ब्रज में उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो वहां नहीं आए। अब वो थोड़े से ही हैं जातों के विपक्ष में, शिशुपाल अभी महाराज नहीं, उस समय शिशुपाल नहीं मारा, ये कंस मारा गया है, उनके भाई लोग मारे गए हैं, ब्रज के जितने भी असुर थे वो सब मारे गए हैं, केशी अघासुर बकासुर ये सब मारे गए, उतना मारी गई, उनका उनकी सेनाएं भी मारी गई हैं कंस के। अब शंकर अभी कुछ कुछ मरे हैं और थोड़े से जो कुछ हैं, मैं कुछ दिनों में ही उन्हें मार करके 10-20 दिन में ही आ जाऊंगा। विशेष करके तुम लोगों का हमारे प्रति, साधारण लोगों की हमारे प्रति जो भक्ति होती है बड़े सौभाग्य से होती है। ये जगत में भक्ति सबसे दुर्लभ चीज है, सब कुछ मिल सकता है, भक्ति सहज नहीं मिलती, और उस भक्ति में भी जो स्नेह की अवस्था है वो तो बहुत ही दुर्लभ है। वो यदि किसी को सौभाग्य से मिल जाए स्नेह, तो इसका मतलब है वह स्नेह कृष्ण को आकर्षित करके उसके पास में मिला देगा। तो आप लोगों को भगवान यह दुर्लभ स्नेह भी आपको मिल गया है। अब इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह प्रेम ही स्नेह ही हमको खींच करके हम लोगों से मिला देगा। यही उसका मतलब है, भक्ति ही भूतानाम मई भक्ति ही भूतानाम अन्नमुदाय कल सके हो बहुत ही नान मदा मदापना मैंने मुझे मिला देने वाला है, जरूर मिलाएगा। अर्थात भक्ति ही जीवों के लिए अमृत स्वरूप है। कर्म और ज्ञान ये यथार्थ में भगवान के प्राप्ति के उपाय नहीं है, कहीं कहीं पर कुछ उपयोगिता होने के कारण उनको सोपान के रूप में मान लिया गया। बहुत दूर से जो कर्म ज्ञान को लक्ष्य नहीं करता और जो ज्ञान भक्ति को लक्ष्य नहीं करता, ये दोनों वृथा है। इसलिए कहते हैं भक्ति हमारे प्रति ही अमृत का कारण है, और इस भक्ति में यदि स्नेह किसी को हो गया साधन करते करते तो वो भगवान को जरूर प्राप्त करते। एक सब अर्थ प्रभु स्वरूपे रसन रात्रि दिने घरे बसी करे आश्वास। यही सब श्लोकों का अर्थ, स्वरूप के साथ में प्रतिदिन रात्रि के समय में या दिन के समय में स्वरूप के साथ में मिल करके आस्वादन करते हैं, तरह तरह से एक एक अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ विभिन्न प्रकार से करते हैं। अब भक्ति में हम एक शब्द है भक्ति, अब भक्ति का अर्थ क्या है? काय मन तन मन वचन से अनुकूल रूप में
जो कृष्ण का अनुशीलन
है, कृष्ण का अनुशीलन है, ये भक्ति का अर्थ। किंतु भक्ति शब्द से श्रद्धा से लेकर भाव और भाव से फिर प्रेम और प्रेम से लेकर के महाभाव तक, ये सभी भक्ति शब्द का वाच्य, ये सभी भक्ति शब्द का वाच्य। और इसका एक एक उदाहरण दें तो भक्ति रसामी सिंधु बन जाएगी, ऐसा ये भक्ति शब्द व्यापक है। इसमें प्रत्येक रस जितनी विचित्रता है ये सब कुछ इसमें आ जाएगी। और इन विचित्राओं के साथ में जब कृष्ण रहते हैं तब इन्हीं को कहता है भगवान। भगवत शब्द से ही भक्ति शब्द संबंधित है। आजकल जो शिव भक्ति, गणेश भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति, देशभक्ति, ये शब्द जो हैं औपचारिक हैं, यथार्थ में भगवत संबंध से नहीं होने के कारण ये भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति कभी हो, शब्द का प्रयोग तभी होगा जब भगवान से संबंधित हो, तभी ये भक्ति शब्द, क्योंकि ये भगवत शब्द से ही बना है। इसलिए भक्ति का जहां तहां प्रयोग नहीं होना चाहिए। नित्य काले से ही भावे आविष्ट होइया, श्लोक पढ़ी नाचे जगन्नाथ मुख हो। नित्य के समय में चैतन्य महाप्रभु इन्हीं भावों को लेकर के हृदय में रख करके और जगन्नाथ के तरफ में देखते हुए इन भावों को स्वागत करते हैं। एकदम उसमें निविष्ट हो जाते हैं, तदात्म भाव से एकदम तदात्म हो जाते हैं। स्वरूप गोस्वामी भाग्य न जाए पर स्वरूप गोस्वामी के भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु ते आविष्ट जार खाए मनोवाद, महाप्रभु जी राधा भाव में आविष्ट हैं, कभी कृष्ण में आविष्ट हैं और सब दामोदर किसमें आविष्ट हैं? महाप्रभु जी के भाव में। तो ये किसके भाव? ये भी उसी के हो गए। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी, क्या समझे है? यदि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए भी जरूर सी के बराबर है, ऐसे ही हुआ। इसलिए प्रभु में इनका चित्त सब समय आविष्ट है। प्रभु क्या सोच रहे हैं, प्रभु ये जो कह रहे हैं वाक्य, ये किस लिए, ये श्लोक जो उच्चारण कर रहे हैं किस लिए इसका उच्चारण कर रहे हैं, ये सबको विस्तृत रूप से विवेचन करते हैं। स्वरूपेर इंद्रिय प्रभु निज इंद्रिय, स्वरूप की इंद्रियों में प्रभु की इंद्रियां मिल गई हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, भगवान के प्रति ऐसी मेरी भक्ति हो जो भक्ति विनोद कबे आपने भूल ली, मैं अपने इंद्रियों को कृष्ण के इंद्रियों में मिला दी। क्या वो कीर्तन है? अरे शरणागति में है, तब भगत विनोद ठाकुर आपने भूली तुम्हारे इच्छाएं मोर इच्छाएं विषाई, तुम्हारे इच्छाएं मोर इच्छाएं विषाई, भगत विनोद तबे
आपने भूली।
तुम्हारी इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिला दे, तुम्हारी भावना में अपनी भावना को मिला दे, इसी को कहते हैं अनुगत्य। गुरु जी के प्रति भी ऐसा होना चाहिए, पहले यहीं से शिक्षा होगी। गुरु जी के भाव जैसे हैं हमारे भाव भी ठीक उसी के अनुरूप। इसलिए भी सुना चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गुरबस्तक में ये सब चीजें दी है, उसमें वैदिक भक्ति के रूप में भी दिया है और रघन का भक्ति के रूप में। हम कैसे ठाकुर जी की सेवा करेंगे? महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्र माध्यम मनसो रसेन रोमांच कंपाशु तरंग भाज, तरंग भाज माने तरंग से समन्वित है, इनके हृदय में भी ये तरंगे तरंगाइत होती है। किसमें? कैसे? महाप्रभु जी महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत में इन्होंने अपने भावों को मिला दिया। जैसे महाप्रभु में रोमांचित अंक पुलक होता है, हमारे गुरु जी में भी। अच्छा, अब गुरु जी में हम मिलाएंगे, मिलना तो बहुत कठिन है, तभी उनके अनुगत्य के द्वारा जैसे वो कीर्तन करते हैं, जैसे उनके भाव हैं, ऐसे ही भाव लाने का नाम गुरु पदाश्रय है। गुरु पदाश्रय मैंने क्या, कान फूकवाना, गुरु का आश्रय लेना नहीं। कान फूक दिया गुरु जी ने, दाहिना कान दे दो और मैं फूक दू। देखा ना भालू से कान लोग फूकवाते हैं, पहले ऐसा चालू था, क्यों क्या जाने क्यों, जैसे इसके रोग सब दूर हो जाए। भालू गांव में आते थे, होता था पहले, अभी भी है ना, तो अब कम आते हैं, किंतु पहले था। हम लोग के कान फुकवाए गए भालू से, उसको नाक में वो रस्सी लगा करके और सब ठीक रखते हैं। वो बहुत जोर से सांस लेते हैं, जानते हो किस लिए? चींटी ने उसके उसमें आ गया ना, और चींटी आ जाने से वो मरेगा, चींटी पकड़ लेगी नाक में तो बस। वो दो चीजों का भय करता है, आग का, यदि आग उसके रोह में लग गया तो बस, और भूखे की नहीं आगे। और दूसरा जो चीटी हाथी और ये सब
हाथी
बस वो पहुंच जाए, इसलिए जोर से ऐसा, तो इसलिए वो भालू वाले होते हैं, पैसे चाहिए उनको, तो ऐसा कोई उपाय निकालते हैं जिससे कि लोग, तो वो सांस छोड़।